تنقید کی اہمیت کیا ہے، تنقید کے اصول کیا رہتے ہیں، تنقید کے دبستان کسے کہتے ہیں، اور جب ہم تنقید کا وچار کرتے ہیں اس کے پہلوؤں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، تب لکھنے والوں کی اور وہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی سر نے ہم کو بتایا. سر نے ایک بہت بڑی چیز کہی کہ جیسے سمے بیتتا ہے ویسے تنقید میں بھی بدلاؤ آتا ہے، اور یہ جو بدلاؤ ہے یہ بدلاؤ بہت مہتوپورن ہوتا ہے. کہیں آپ پرانی تنقید کو لے کر بیٹھ گئے اور سمے تو بیتتا جا رہا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تنقید کے معنی کچھ اہم نہیں رہے ہیں، وہ بدل چکے ہیں. تو جس طرح سمے بیتتا جاتا ہے اس طرح ہر چیز میں بدلاؤ آتا ہے، اور ہر ریڈر کی اور رائٹر کی جو پڑھتے ہیں اور جو لکھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی بھی ساہتیہ کا وہ پریکشن اپنے واتاورن کے مطابق کرے. اور جیسے کہ پرانے کچھ ساہتیہ ہے، پرانی کچھ ناول، ڈراما یا افسانہ ہے، تو اس کا بھی وشلیشن اگر ہم ورتمان استھتی کے نظریے سے کرے تو اس سے بھی بہت بڑا گیان ہم کو حاصل ہوتا ہے. اب ہم سر سے مغربی تنقید کے بارے میں جاننا چاہیں گے. پہلے تو میں سر کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں. نمسکار سر. سر تنقید کے بارے میں آپ نے بہت اچھی باتیں ہم کو بتائی، بہت ہی سرلتا سے سلبھتا سے ہم کو تنقید کے بارے میں بتایا، جس کے کارن ہمارے اسٹوڈینٹس کے وہ سمجھ میں آ گیا کہ تنقید کا کیا معنی کیا ہے، کیا مہتو ہے، اس کے اصول کیا ہے. سر ابھی مغربی تنقید جو ہے وہ بار بار بولی جاتی ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ مغربی تنقید کا جو پرکار ہے یا ٹائپ ہے اس کے بارے میں ہم کو بتائے، اور یہ اتنی مہتوپورن کیوں مانی جاتی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے.
جی جی جی. تنقید کے ماخذ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اردو میں جب ہم اردو تنقید نگاری کی بات کر رہے ہیں تو یہ اردو میں تنقید کا رجحان آیا کہاں سے ہے، تو ہم کو اس کے دو ذرائع ملتے ہیں، سروت. ایک تو یہ آیا ہے جس کو ہم روایت کہیں گے،
صحیح ہے
نا، ایک روایت آ رہی ہے مشرق سے، اور اس کے بالکل ایک سکے کے جس طرح سے ایک سکہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. وہ ون سائیڈڈ جو کوائن تھا وہ شولے میں،
صحیح بات ہے،
امیتابھ کے پاس ہی تھا وہ. دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی ون سائیڈڈ نہیں بنی.
صحیح بات ہے.
تو ایسے ہی مغربی اور مشرقی تنقید جو ہے وہ ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو چلتے ہیں. تو جب تنقید میں کسی چیز کو جب کوئی نئی بات ہو رہی ہے تو ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ایک نمونہ ہوتا ہے، سیمپل ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر اس کا، ایک چیز آپ بنانے جا رہے ہیں گھر میں تو بھی کیسا بنانا، پہلے تم بنا کر بتاؤ پھر اس کے اوپر بن رہا ہے. تو ایسے ہی جب اردو تنقید کا کام شروع ہوا، جیسے ہم نے صبح کے سیشن میں آپ نے سوال کیا تھا، ہم نے دیکھا کہ اردو میں باقاعدہ روایت بہت پرانی نہیں ہے تنقید کی، لیکن مشرقی تنقید میں جہاں اردو آج کھڑی ہے، اردو مشرقی تنقید میں شامل ہے، کیونکہ مشرقی میں ہم نے دیکھا کہ عربی تنقید آتی ہے، اس کے بعد عرب سے وہ تنقید نکل کر عرب میں. ایک اور پہلو جو صبح میں میرے اور ایک بات ذہن میں آئی کہ عرب میں پہلو جو اس کو جس پیمانے سے وہ آنکھتے تھے اس کو کہ شعر کیسا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ بھائی شعر میں وہ شعر نہیں ہے. قدامہ بن جعفر نے کہا کہ وہ شعر ہی کیا جس میں جھوٹ نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیمانہ یہ بھی تھا کہ شعر میں جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے بولو. تو ہوتا یہ تھا پھر کہ وہ ایک اگر کسی معشوقہ کا اتنے بھی بال ہوں گے तो वो ले जाके उसको वो बाल उसके बढ़ते 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 मतलब वो उसको खूब लंबा कहाँ तक लेकर जाते थे।
बराबर
तो इतनी झूठ एक बात पर चलती थी। लेकिन फिर कुछ दूसरे नक्काद आए, तनकीद निगार, उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठ पर ये इसका ढांचा नहीं चलेगा। अगर आप फन को, अदब को अगर आप झूठ के पैमाने पर नापेंगे तो ये नहीं चलेगा। तो फिर बदलाव आ गया, चेंजेस आते हैं,
बराबर
तो उसमें भी बदलाव आया। अब वहां से अगर हम अरबी तनकीद से अगर हम फारसी तनकीद की तरफ आते हैं, जो सेकंड उसका पार्ट है, पार्ट टू, दूसरा हिस्सा उसका, कि ईरान की से तनकीद आई। ईरान की तनकीद का अरब के बाद ईरान का नंबर ही आता था, इसलिए कि आज का जो ईरान है, हम जानते हैं कि ईरान, उसका कैपिटल, राजधानी तेहरान, हम ये समझते हैं। लेकिन आज के वो सारे कंट्रीज जो अलग अलग हो चुके हैं 92 में रशिया के
बराबर
ख़त्म होने के बाद, यूएसएसआर के, वो सारे कंट्रीज ईरान का भाग थे, हिस्सा थे उसका। तो और इन सारे कंट्रीज की जो सकाफती बुनियादें थीं वो एक ही थीं,
बराबर
जैसे समरकंद, बुखारा, आज जो आज़रबाईजान, आपके उज़्बेकिस्तान, ये सब एक ही आता था। अब ये सब अलग हो गए, तो अब ईरान सिर्फ ईरान रह गया। पहले ईरान ईरान नहीं था,
नहीं
वो
था
एक मुकम्मल सकाफत की नुमाइंदगी करता था अरब के बाद दूसरे नंबर पे। लेकिन इतना हुआ कि तनकीद में, मशरकी तनकीद में, ईरान ने अरब वालों का ततब्बो किया, यानी उनको ही अपना मॉडल रखा सामने।
मॉडल रखा।
इसलिए ईरान में तख्लीक ज़्यादा मिलती है। इसलिए हम देखते हैं कि रोमी, आपने सुना होगा,
हाँ
रूमी है, सादी शिराजी हैं, हाफिज शिराजी हैं, जामी हैं, ये सारे लोग हैं, उर्फी शिराजी हैं, ये सब हैं। तो ये लोग तो मिले हमको, लेकिन वहाँ से कोई बहुत बड़े नक्कादों के नाम नहीं आते हैं। हाँ, चंद लोग हैं जिनके नाम हम ईरान से आने वाली मशरक़ी तनकीद के ना ज़ुमरे में हम उनके नाम ले सकते हैं, जैसे कैकाउस एक नक्काद गुजरे हैं वहाँ पर, जैसे निज़ामी उरूजी समरकंदी हैं, ये एक बड़ा नाम आता है हमारे पास, फखरी समरकंदी हैं, ये भी एक नाम आता है ईरान से, या उसके बाद दौलत शाह समरकंदी है, ये नाम हमारे पास ईरान से तनकीद के ज़ुमरे में, तनकीद के
बराबर
ज़ैल में आते हैं कि ये वहाँ के तनकीद निगार थे। उसके बाद तीसरी अहम बात जो मगरबी तनकीद पर बात करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि हम जहाँ हैं हिंदुस्तान, हमारी जो दरख्शां रवायात हैं, ब्राइट ट्रेडिशंस,
सही बात है।
तनकीद में भी हम हैं।
अच्छा
और तनकीद में अगर संस्कृत तनकीद की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होती।
अच्छा तो संस्कृत का भी रेफरेंस है
संस्कृत का अगर हम
सर।
बात करें,
सही बात
संस्कृत बुतिका, जो बुतिका जो लिखी थी
सही बात
यूनान में लिखी गई थी, तो हम ये मानते हैं, मतलब मैं अपने तौर पे ये मानता हूँ कि यूनान में, ग्रीक में जो तनकीद अरस्तू, अफलातून, सुकरात, जिनको हम सोक्रेटस बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं, ये सब,
बराबर
तो वो जो उनकी ट्रेडिशन जो, तो हम ये मेरा ये मानना है कि उनके जो ट्रेडिशंस थी, कौन सी, तनकीदी रवायात,
तनकीद
और संस्कृत की तनकीदी रवायात, ये हाँ सेम है, हम पल्ला हैं, एक ही क्या इस पर खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म
बराबर
पे, क्योंकि दोनों भी बहुत प्राचीन, बहुत कदीम है। तो संस्कृत में अब कैसे, इसकी रवायत क्या है संस्कृत के, हमने ये तो अरबी में तो देख लिया कि अरबी में ये झूठ का या और ये इस तरह से, लेकिन संस्कृत में क्या है। तो संस्कृत में अलंकार हैं, रस हैं, हम रस की बात करते हैं तो देखा जाता है कि भी उसमें श्रृंगार रस है,
सेवा
हम देखते हैं कि अद्भुत रस है, हम देखते हैं कि वीर रस है, हम देखते हैं कि और भयानक रस है, ऐसे 8 रस हैं। तो ये जब किसी अदबी पारे का, यानी अदबी तखलीक का, जब उसकी तनकीद की जा रही है, तो संस्कृत में भी हमारे पास ये है कि हम क्या देख रहे हैं, श्रृंगार देख रहे हैं, हम उसका, हम ध्वनि देख रहे हैं, ध्वनि अलंकार। तो हमारे पास ये सब, हमारे पास हैं ये प्रथाएं, हमारे पास ये
बराबर
तनकीदी रवायत है
हाँ
संस्कृत
बराबर
की भी। तो ये इतनी हेल्दी, इतनी सेहतमंद रवायत हैं ये, कि हम ये जब किसी चीज़ को देखने बैठें तो आप कहीं से भी ले लीजिए। अगर आप अरब के पैरामीटर्स को, पैमानों को देखेंगे तो हमारे पास ये है, अगर आप ईरान से देखेंगे तो उनके भी कहीं ना कहीं, अगर और हम संस्कृत का अगर देखते हैं तो ये चीज़ें आएंगी कि इसमें कौन से अलंकार है, इसमें कौन से रस हैं। अब यहाँ से ये तो हमारे हो गई कदीम रवायात तनकीद की, अब वहाँ से हम आते हैं कि मॉडर्न की तरफ। तो अंग्रेज़ी में मॉडर्न, उसकी जो अंग्रेज़ी खुद एक मॉडर्न लैंग्वेज है, इससे पहले अंग्रेज़ी के मॉडर्न लैंग्वेज होने का तो हम ये देखते हैं कि इसका हम आप भी, आपने भी अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ा है, तो अंग्रेज़ी लिटरेचर में हमने पढ़ा है कैंटरबरी टेल्स चौसर की। तो चौसर की कैंटरबरी टेल्स के अंदर जब एक लाइन आती है तो एक लाइन में कम से कम 5 अल्फाज ऐसे आते हैं कि जिसमें नंबर दिए हुए रहते हैं, उसकी मीनिंग नीचे समझाए हुए रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 15th सेंचुरी यानी 15वीं सदी में अंग्रेजी लैंग्वेज इतनी समृद्ध नहीं हुई थी, इतनी खुशहाल नहीं हुई थी, इतनी रिच नहीं हुई थी कि उसको आम आदमी, आज का आदमी समझ सके। मतलब अभी वो सिर्फ तरक्की के दौर से गुजर रही थी। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि जब लैंग्वेज ही अभी पूरी बनी नहीं है तो उसमें अदब तख्लीक करना और फिर तनकीद करना, ये तो बात की चीज़ है। लेकिन मगरिब से, मगरिब से मुराद अब क्या है? मगरिब से हमारी मुराद होगी इंग्लैंड, मगरिब से हमारी मुराद होगी अमेरिका, मगरिब से हमारी मुराद होगी इटली और फ्रांस, जहाँ पे इनकी एक और ख़ास तौर से यूनान ग्रीक। तो अब वहाँ से मगरबी तनकीद में भी एंशियंट हमारे पास मिलता है, अरस्तु है, अफलातून है, सुकरात है, बुखरात है, ये लोग मिलते हैं हमको, देवजांस कल्बी है, फिर ये सब लोग मगरबी तनकीद के निगारों ही के ज़ुमरे में आते हैं। अगर हम सुकरात की अगर पढ़ें किताब अल जमहूरिया रिपब्लिका, तो रिपब्लिका में उसने कहा कि भाई एक ऐसी रिपब्लिक होनी चाहिए जिसमें शहरों की जगह ही नहीं। अब बताइए कि ऐसा समाज वो बनाना चाहता था कि जहां पर शहरों की कोई जगह नहीं, बाहर आ दो। तो ये क्या था? ये था उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्योंकि कोई भी चीज ऐसे तो होती नहीं है नहीं। कि आपने कहा कि नहीं होना ये, नहीं ऐसा नहीं है। लॉजिक क्या है?
लॉजिक सही बात,
अकल तो वजह मांगती है।
सही बात
कि भी क्यों आप, ठीक है शहरों को आप अपने स्टेट में नहीं रखना चाहते, जैसे हमारे मतलब एक वो कोई किसी भी नाम से एक राज्य कायम हो जाए तो ये नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए आपको? तो बोलते थे कि शायर जो हैं वो टाइम पास करते हैं और किसी स्टेट के लिए ये अच्छा नहीं है कि टाइम पास करने वाले लोग हों ना। तो वहाँ ये रवायत है। लेकिन फिर बाद में जो दूसरे लोग आए फिर उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा चेंजेस लाते चले गए, कहा कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा। ये भी तनकीद थी,
सही बात,
मगर भी तनकीद थी कि वो नहीं होना
बराबर।
लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं है, एकदम बाहर कर देने से चलेगा नहीं,
चलेगा नहीं।
बच्चा अगर बिगड़ जाए घर का बच्चा तो उसको घर से बाहर नहीं कर देते,
सही बात,
हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको सुधारे।
सही बात, सही बात
है ना। हालांकि वो एक बच्चे की बिगड़ने से, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे, मगर ये सोच, बिगड़ा है एक तू मेरे बेटे मगर ये सोच, बिगड़े हैं काम कितने तेरे एक बिगाड़ से।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो एक बेटे के बिगड़ने से काम कितने बिगड़ते, ये उसके जहन में बात थी, है ना। लेकिन ये हुआ कि दूसरे बाद में जो नकाद आए उन्होंने कहा कि नहीं इसको घर में रखो लेकिन सुधारो,
सुधारो। सही बात है, सही।
तो ये तनकीद ने अपना रूप बदला,
रूप बदला,
बाहर मत करो यहीं सुधारो उसको
अपने आप में।
तो कहा कि नहीं शायरों को बाहर मत करो,
सही बात,
करने दो काम उनको, लेकिन ये कि उनको समाज के लिए, माशरे के लिए कारामत बना दो, काम लो उनसे,
काम लो,
छोड़ो मत उनको,
छोड़ो मत।
तो मगरबी तनकीद में ये सब। फिर वहां से हम आते हैं तो लव जॉनसन है, उसके बाद ड्राइडन है ना, उसके बाद आपके
सिगमंड फ्राइड भी,
सिगमंड फ्राइड हैं। सिगमंड फ्राइड का तो हम देखते हैं कि भी साइकोलॉजिकल मतलब नफ्सियाती तनकीद का तो मौजूद है, वो फाउंडर है सिगमंड फ्राइड, नफ्सियाती तनकीद, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। तो ये सब यहाँ तक चले आ रहे हैं। इसमें से भी अगर हम एक अलग अलग इनको बात करें मगरबी तनकीद में, तो हाँ इसमें अहम कार्ल मार्क्स का हमने देखा, टॉलस्टॉय का देखा हमने, टॉलस्टॉय के दौर में देखिए। हाँ एक चीज जो एक मुल्क का नाम जिसने अहम रोल अदा किया तनकीद में मगरबी तनकीद का, वो है रूस।
रूस
क्योंकि जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, पहली जंग अजीम, तो उसके पहले, थोड़ा पहले से और उसके बाद आज तक जो अदब तख्लीक किया गया, जिसको प्रोग्रेसिव बोला गया, मतलब तरक्की पसंद, तो वहाँ से चलते फिर इश्तराकी वगैरह, तो इस अदब को, इस अदब के लिए रूस ने बहुत अहम रोल
अहम
अदा
रोल
किया,
भूमिका
बहुत
निभाई।
अहम रोल अदा किया, क्योंकि 1917 में जो इनकलाब आया रूस में, वहाँ पर कम्युनिज्म आ गया, जार चले गए, कम्युनिज्म के आते से क्या हुआ, कम्युनिज्म ने पूरी जड़ें पकड़ ली, क्योंकि उन्होंने सब वादे
सही बात।
ऐसे ख्वाब दिखाए थे, लेकिन वो जार ने जो कुछ किया, टॉल्स्टॉय जिस वक्त था वो जार की हुकूमत थी, तो जारों ने जो कुछ भी अवाम के साथ वहाँ किया, टॉल्स्टॉय, अब बात आप बात कर रहे थे सुबह में कि अदब जो है समाज में या इंसानी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है, ये रोल अदा करता है
ये सही बात
कि टॉल्स्टॉय ने क्या किया,
सही
अपनी
बात।
आप पढ़िए टॉल्स्टॉय को, तो आप देखेंगे कि टॉल्स्टॉय ने पूरा किसान वर्ग, यानी किसान तबका, ज़िरात पेशा, मजदूर, इन सब की जो बुरी हालात थी,
सही बात।
उसको पूरा एक दो रोटी और एक गिलास वोडका, बस इसके लिए पूरी जिंदगी, उसमें पूरा दिन भर वो पीसते रहते थे चक्की में, उनका पूरा खाना उसके पास गुलाम रहता था,
सही बात।
तो इसने अपने अदब के जरिए वो काम किया, फिर उसने जो कुछ लिखा, जो तनकीद निगार थे उन्होंने उसका तनकीद की कि उसने ऐसा किया, ये किया, फिर उन्होंने निकाला उसमें से अर्क जो निचोड़ कर
बराबर
निकालते हैं,
बराबर।
वो उसने उन्होंने निकाला, टॉल्स्टॉय वगैरह ये सब।
सर, तذکرے का भी बड़ा महत्व है उर्दू साहित्य में,
जी जी
तो तذکرے का मतलब क्या है और उसके क्या मायने हैं?
तस्करा जो लफ्ज़ है, तस्करा लफ्ज़ बना है जिक्र से,
जिक्र।
हम बोले भी किसी का जिक्र करना, तो जब हम किसी का जिक्र करते हैं तो उसको तस्करा करना कहते हैं,
अच्छा।
और जो तहरीरी शक्ल में लिखा जाता है वो तस्करा,
तस्कर।
तो उर्दू अदब में तस्करा लिखने की रवायत काफ़ी, बहुत कदीम नहीं है लेकिन पुरानी है,
पुरानी।
ये 150 साल की नहीं है बल्कि 300-400 साल पहले की, 300, कम से 300 साल, 350 साल के पुरानी रवायत है ये। और तस्करे आज जो हम देखते हैं कि एक ये चीज़ है कि अगर मैं अपनी, अपने बारे में, अपने हालात ज़िंदगी के बारे में अगर कुछ लिखने बैठूं, तो जाहिर सी बात है कि उसका मरकज़ तो मैं ही रहूँगा, मैं अपने ही बारे में लिख रहा हूँ, अपने ही एक्सपीरियंसेस हैं, अपने मुशाहदात हैं, अपने तजुर्बे हैं, अपनी ये सारी चीज़ें, तो ये कहलाएगी आप बीती,
सही बात।
मेरे अपने बारे में हो गया। लेकिन यही अगर उसका मरकज बदल जाए, हदफ बदल जाए,
सही बात।
तो वो हो जाएगा तस्करा, क्योंकि अब मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं
जो मेरे जिंदगी में
जो
और
जो मेरी जिंदगी में आए
सही बात।
या जो जिंदगी में ना भी आए हों लेकिन जो होकर गुजर गए हैं,
सही बात।
तो उनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। अब तस्करे में जिक्र कर रहा हूं तो मैं ये तो सिर्फ अकेले तो ये नहीं कहूंगा कि भी सर आए थे मेरी जिंदगी में, जैसे आपकी
सही
बात
बात।
अगर मैं करूंगा अपनी किताब जब लिखूंगा
सही
कि राजदरकर सर आए थे, वो बहुत अच्छे इंसान, कुछ ना कुछ तो मुझे डिटेल लिखनी पड़ेगी
सही
ना।
बात है। सही बात।
तो अब इंसान की, जिसका भी वो जिक्र कर रहा है, तो सबसे पहले उसका टारगेट रहेगा उसकी पर्सनालिटी, सबसे पहला हदफ रहेगा उसकी शख्सियत, और
बराबर।
दूसरा हदफ उसका रहेगा उसका, उसकी खिदमात,
खिदमत।
जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं,
सही बात है।
कि
सही बात।
साहब मैं हसनैन सर का जिक्र तो कर रहा हूँ, उनका तस्करा लिखा है, क्यों लिखा है, ऐसे क्या सुरखाब के पर थे उनमें, ऐसा क्या लगा हुआ था उनको, सोने का मुकुट,
सही बात।
तो इसलिए कि उनका ये खिदमात
कंट्रीब्यूशन।
ये थी, कंट्रीब्यूशन ये था उनका।
सही बात है। सही बात।
इसलिए जब भी हम देखते हैं कि तस्करा जब किया जाता है तो उस शख्स के बारे में डिटेल रहती है,
बराबर।
तफसीलात होती हैं, और फिर उन तफसीलात में उसका क्या खिदमात उसने अंजाम दी है, और तस्करा निगार उसका तस्करा कर क्यों रहा भाई,
कर क्यों रहा? ये बात बहुत
वो
अधिक
फिर वो उसकी वजाहत करता
सही
है कि
बात।
मैंने इसलिए ये इसलिए तस्करा कर रहा हूँ, तो फिर उसकी अच्छाइयाँ भी आएंगी, बुराइयाँ भी
बुराई भी
आएंगी, ये
आएगी।
सारी चीज़ें आती हैं,
अच्छा
ये तस्करे आते हैं उसमें।
सर, जब तस्करा पढ़ते हैं किसी महान व्यक्ति का, तो हमको बहुत प्रेरणा भी मिलती है,
जी
और कभी कभी उन पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जाता है, वो उजागर किया जाता है कि उस खुद کہ اس کے کیا پلس پوائنٹس تھے کیا نگیٹو پوائنٹس تھے.
صحیح.
تو جب اپنے بچے تذکرہ کسی کا پڑھیں گے تو وہ پڑھتے سمے انہوں نے کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے
جی.
اس کے بارے میں ذرا بتائیے.
جب آپ تذکرہ پڑھ رہے ہیں کسی کا تو تذکرہ پڑھتے وقت یہ بات دھیان میں ہونی چاہیے کہ جس شخص کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں وہ شخص کس دور سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے کہ وہ شخص کس دور سے تعلق رکھتا ہے تب تک ہم اس کے وہ اس وقت جو قدریں رائج تھیں.
صحیح بات ہے.
ایک مثال کے طور پر اگر سمجھیے میں ایک تذکرہ میں نے پڑھا تو میر جالب دہلوی تھے. میر جالب دہلوی اتنے بڑے شاعر تھے تو ان کو اصل میں ہو گیا اس وقت جس طرح کا رواج تھا تو ان کو کسی سے ہو گئی محبت. اس وقت کا رواج تھا کہ محبوبہ کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے 8 دن 1 سال یہی ہو جاتے تھے. پھر بعد میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ اس کی شادی ہو جاتی تھی. ادھر اس طرح کا یہ ماحول یہ تھا. آج یہ ماحول نہیں ہے. تو میر جالب کسی چنیا بیگم نام کی کوئی خاتون تھی وہ ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے. تذکرے کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے تذکرے کا دور سے کیا تعلق ہے کہ جب ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کو آج کے اس میں نہیں دیکھنا ہے کہ فوراً اس نے اٹھایا اور موبائل لگا دیا. یہ نہیں, وہ دیکھنا ہے کہ وہ دور میں قدریں کیا تھیں, ویلیوز کیا تھیں. تو اٹھایا اور انہوں نے بہت محبت کرنے لگے. ان کی شادی کہیں اور ہو گئی ایز یوزول, جیسے اس وقت ہوتا تھا ایسے ہی. تو وہ اتنے انہوں نے کیا کیا, یہ آج کی نئی نسل ہے, اس نسل کے لیے ایک سبق ہے اس میں.
اچھا.
ہاں, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شراب پینے لگ گئے صاحب, یا صاحب بہت بس اب بال بڑھا لیے اور بالکل کپڑے پھاڑ کر گھوم رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنی پوری انرجی پوری طاقت مطالعے میں لگا دی, اسٹڈی میں. اور پھر یہ حال ہوا کہ اتنے غرق ہو گئے مطالعے میں کہ انسائکلوپیڈیا بن گئے. چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا. کوئی کھڑے کھڑے چلتے چلتے کہا گیا, ارے میر صاحب ذرا ایک سوال تھا, یہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ صاحب بس غضب ہو گیا.
کیا بات.
اس ایک لفظ کے نہ صرف معنی بتائے جاتے تھے بلکہ وہ لفظ کس زبان کا ہے, وہاں سے کس زبان میں, کس زبان سے آیا اس زبان میں, پھر وہ کس قبیلے کا ہے لفظ, پھر اس کی جنس کیا ہے, مذکر ہے مؤنث ہے, پھر اس کے اس سے اور کون کون سے الفاظ بنے ہیں, اس کی پوری خاندانی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی چل رہے. پھر اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, دوسری زبان میں اس کا استعمال کیسے, کہاں وہ لفظ کہاں اور کہاں کہاں گیا, بس وہ ایک لفظ کے معنی کیا پوچھ لیا, چلتے چلیں. یہاں تک کچھ بتاتے ہیں کہ کسی نے ایک صاحب نے ان سے کچھ سوال کر لیا, اب یہ جواب دیتے ہوئے چلے. اب اس کو جواب جتنا چاہیے تھا مل گیا اور آگے آگے چلتے چلے چلتے چلے چلتے اس کا گھر آ گیا. وہ اپنے گھر میں گیا, اندر سے دروازہ بند کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ارے صاحب آپ نے سوال کیا تھا, جواب تو سنیے.
کیا
تو یہ ہم کو جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں, جیسے میں مثال دے رہا ہوں یہ
برابر
کہ میر جالیب کی مثال, تو یہ اس دور کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو جو آپ نے سوال کیا کہ نئے ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے طلبہ جب تذکرہ پڑھیں تو کن باتوں کو سامنے رکھیں.
سر تذکرے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ جو ویکتی یہ لکھتا ہے
جی
اس کے زندگی میں جو اہم کردار آتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں وہ اس کو پربھاوت کرتے ہیں
جی.
تو نہ کیول تذکرہ لکھنے والا بلکہ اس کی زندگی میں جو آئے اس سے بھی ہم بہت بڑی شکشا حاصل کر سکتے ہیں.
صحیح صحیح.
ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ٹائم پیریڈ ہے, جو کال ہے اس کا, وہ بڑا مہتوپورن ہے آپ نے بتایا. لیکن تذکرہ اس وقت کی جو اپنی پرمپرا رہی ہوگی, جو اپنے اصول رہے ہوں گے, جس پرکار کی دھارمک ویوستھا رہی ہوگی اور عوام میں جس طرح کے سوالات کیا کسی سمسیا کا اس کو اٹھایا ہوگا, اس کے بارے میں بھی اپنے کو تذکرے کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کیا؟
تذکروں کا مطالعہ کرنے کے بعد سماجی یعنی معاشرتی مسائل اس وقت لوگوں کو کیا پیش آئے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے کہ جب تذکرہ ہے تو ان مسائل کے ذکر کے بغیر تو وہ تذکرہ خالی نہیں ہوگا. क्योंकि तذکرے میں یہ بات بالکل نہ اس کے نام سے ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تذکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزوں ان چیزوں کا ذکر نہ آئے، یقیناً آتا ہے،
آتا ہے صحیح
کیونکہ جب انسان ہے تو انسان کے آس پاس گھومنے والی، جس کا ذکر انسان ہے تو اس کا ذکر ہے،
صحیح بات
اور جب ذکر ہے تو اس کے آس پاس گھومنے والی ہر چیز کا ذکر ہے، تو اس کے مسائل بھی اس کی زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مسائل کا، اور اگر وہ انسان کے، اس انسان کے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تذکرے میں، اگر اس انسان کے مسائل کا ذکر ہے تو وہ اس کے اکیلے کے مسائل نہیں ہیں، وہ سماج کے مسائل ہیں، وہ معاشرے کے مسائل ہیں،
صحیح بات،
تو وہ
یہی
کیونکہ مسائل تو آدمی کو ہی
صحیح بات
پیش آتے ہیں،
صحیح بات،
کیونکہ معاشرہ آدمی سے بنتا ہے،
صحیح بات،
ایک جنگل میں ہم جا کر کھڑے ہیں تو وہ معاشرہ وہاں معاشرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان ہی نہیں ہے، جانور کہیں ہیں لیکن معاشرہ تو سوسائٹی نہیں کہیں گے، اگر ایک جگہ 100 جانور کھڑے ہوئے ہیں وہ سوسائٹی نہیں ہے، 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں وہ سوسائٹی ہے، وہ معاشرہ ہے، کیونکہ معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں،
برابر ہے،
یا نا، جیسے کمیونیکیشن، بات چیت، اس کے طور طریقے، اتوار، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے اس کے اصول، ساری چیزیں آتی ہیں اس میں۔
سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ تذکرہ کسی ایک ویکتی کا نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے سماج، اس وقت کے سماج کا آئینہ ہوتا
جی
ہے،
جی،
لیکن سر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے افسر یا کوئی پولیٹیکل لیڈر جب کچھ لکھتا ہے اپنے آفٹر ریٹائرمنٹ، تو اس کا جو انٹینشن ہوتا ہے، جو ادیش ہوتا ہے، وہ ادیش تھوڑا الگ رہے ہوتا ہے کہ وہ کسی گھٹنا پہ یا کسی پارٹی پہ یا اس وقت کی جو ستادھیش ہے ان پہ وہ کامنٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کا یہ ایسا دھارنا رہتی ہے، ان کا ایسا من کرتا ہے کہ یہ پڑھنے سے مجھے کچھ ایسی سیکرٹ معلومات ملے گی کہ جس کا اپیوگ کر کے میں، یا وہ پڑھ کے مجھے بہت انٹرسٹ ہوگا یا انٹرسٹ آئے گا مجھے، تو اس پرکار کے ادیش جو لکھے جاتے ہیں تصورے، ان کا حل مجھے نہیں لگتا انت میں جا کے کوئی کسی دھیان میں رہے گا یا کچھ، تو ایسے کچھ آپ کے ذہن میں ایسے کوئی کی جس کا ادیش بالکل الگ تھا کر کے وہ اتنے سکسیس نہیں ہو پائے جتنے ہونے چاہیے تھے، تو ایسے اگر ایک دو بتائے تو جانکاری اچھی ہوگی۔
سر دیکھیے، تذکرے جو آج کے دور میں جو آپ نے بتایا ہے کہ الگ ادیشوں، الگ مقاصد کے تحت جو تذکرے لکھے گئے ہیں، دیکھیے تذکروں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس وقت جو لوگ تھے اور جو فن تھا، جو ادب تھا، وہ محفوظ ہو جائے،
صحیح،
اور ایک چیز دوسرا تذکروں کا مقصد یہ تھا کہ جو یادداشتیں یا جو لوگ یا جن لوگوں کے کام، جن لوگوں کا تخلیق کیا ہوا ادب محفوظ ہو جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو تذکرہ کرنے والا ہے یعنی تذکرہ نگار، اس کے خیالات بھی محفوظ ہو جا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ اس کا کیا سوچنا تھا۔
برابر،
مثال کے طور پہ اگر آگے بات ہوگی کہ تذکرے کے تعلق سے اور بات ہوگی کہ میر نے کہا کہ بھی یہ اس کا یہ شعر بہت خراب ہے، تو وہ شعر اچھا ہو یا خراب ہو لیکن میر کی رائے تو معلوم ہو گئی کہ میر اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ بات ہوگی۔ آج کے تذکروں کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو آج کے تذکرے، کوئی بھی تذکرہ جس میں سطحیت، سطحیت مطلب سرفیشیل کوئی بات ہوگی، جس میں سماج کا کوئی سروکار شامل نہیں ہوگا، جس میں کوئی بہت ہی ٹائملی یا اسپونٹینس اگر کچھ اس میں شامل ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو اس کا حشر جیسا آپ نے کہا برا ہی ہونے والا ہے، وہ یاد نہیں رہے گا لوگوں کے ذہنوں میں۔ وہ تذکرے جن میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پازیٹیوٹی، مثبت فکر تھی، جس کے تذکرہ لکھنے والے کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ سماج کے یعنی معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے لکھ رہا ہوں، ان کی رہنمائی کے لیے لکھ رہا ہوں، وہ تذکرے آج بھی سلامت
ہیں۔
جیسے میرے خیال سے 10-15-20 سال، 15-1 سال پہلے ونگس آف فائر، اے پی جے ابوالکلام کا آٹوبایوگرافی ہے، ہم اس کو تذکرہ سمجھ کر اگر لے کر چلیں، کیونکہ ان میں بہت سارے لوگوں کے ذکر کیے انہوں نے، جیسے ان کے والد کا ذکر ہے، ان کے فیملی کا ذکر ہے، اس وقت کے ان کے ٹیچر جو تھے سبرامنیم صاحب اور رامانوجم، یہ ان کے ذکر ہیں، جس کا ذکر ہے وہ تذکرہ۔
صحیح بات،
تو जो आप बीती ऑटोबायोग्राफी है वो भी दैट इज मतलब वो भी एक हिस्सा है उसका, तस्करा का उसमें आता ही है। तो उन्होंने जो लिखा वो इसलिए लिखा, जैसे उनके एक कोटेशन मुझे जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं अगर वो पढ़ सकें, विंग्स ऑफ फायर, उसके हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुके हैं, उर्दू वाले भी, उर्दू में भी उसके तर्जुमा हो चुका है APJ अब्दुल कलाम का, तो उसको देखा जाए वो तस्करे इन तस्करों की जिंदगी ज्यादा होती है क्योंकि ये लोगों के इसलिए लिखे जाते हैं कि लोगों को इनके जिन लोगों के जिक्र हैं उस वक्त उन लोगों के तहीं उनके दिलों में इज्जत के जज्बात पैदा हों, वो कदरें लोगों के अंदर लोगों की जिंदगी में आ जाएं, वो ख्यालात जो उस वक्त पाकिजा ख्यालात उन लोगों के थे जिनका जिक्र किया गया है वो उनसे लोग सबक हासिल करें और वैसा बनने की कोशिश करें। इसलिए अब अगर आप ऐसा तस्करा करें कि जिसमें एक पर्टिकुलर एक खास कोई पार्टी है, एक खास कोई शख्स है जिसका खुद अपना किरदार बराबर मुतय्यन नहीं है, वो खुद अच्छा किरदार था या नहीं, वो एक लोगों में एक वो कायम है कि पता नहीं, तो क्या तस्करे, वो तो सिर्फ आपने खुश कर दिया, बाकी खत्म हो गया, चली गई किताब भी है तस्करा भी गया।
तो जैसे कि अभी आपने कहा कि तस्करा आने वाली नस्ल पे प्रभाव डालने वाला एक साधन है और ये लिखने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आने वाली नस्ल को क्या देना चाहते हैं, उनमें प्रेम पैदा करना चाहते हैं, प्यार पैदा करना चाहते हैं या नफरत। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि तस्करा लिखने वाले की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। शोराए जो तस्करे होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
जी, शोराए उर्दू के तस्करे अगर हम देखें तो उर्दू के जो शोरा हुए हैं, मतलब उर्दू के जो शायर हो गुजरे हैं, इनके तस्करे लिखे गए या तो उनके हम असर शायरों ने लिखे या फिर हम असर मुसन्निफिन ने लिखे। तो इसमें दो हिस्सों में बांटा गया है इसको, एक तो उर्दू के शोरा, उर्दू के शायरों के वो तस्करे जो फारसी जुबान में लिखे गए और उर्दू के शायरों के वो तस्करे जो उर्दू जुबान में लिखे गए।
सही बात।
मिसाल के तौर पे फारसी जुबान में जो तस्करे लिखे गए उसका अगर मीर तकी मीर उर्दू गजल का बहुत बड़ा नाम है, गालिब से पहले नाम लिया जाता है, तो आपको भी कुछ अशार याद होंगे कि मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है।
क्या उन नीम बाज आंखों में,
हाँ, सारी मस्ती शराब की सी है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है।
क्या बात।
तो ये मीर है, तो मीर ने जो तस्करा लिखा उसका नाम है नुकातुश्शोरा।
नुकातुश्शोरा,
अगर आपको भी कहीं किताब ये हासिल हो तो ये जरूर पढ़िए, नुकातुश्शोरा मीर का तस्करा है। शोरा अपने हम असर शोरा के तस्करा है, उसमें कई उन्होंने इनामुल्लाह यकीन, आबरू, आरजू, इस तरह कई शोरा ऐसे हैं जिनके तस्करे उसमें हैं, जिनका जिक्र है उसमें। तो ये तस्करा फारसी जुबान में लिखा हुआ है, ये तस्करा फारसी जुबान में लिखा हुआ है, मीर का है। तो दो हिस्सों में वो तस्करे जो फारसी में लिखे हुए हैं और वो तस्करे जो उर्दू जुबान में लिखे हुए हैं। जैसे और अगर मैं जिक्र करूं कि फारसी में लिखे हुए और कौन कौन से हैं, तो एक तो मैंने बता ही दिया है कि मीर तकी मीर का नुकातुश्शोरा है, दूसरे अगर देखें तो सैयद फतेह अली गुरवेजी का तस्करा है रेख्ता गोया है, तस्करा है रेख्ता गोया।
अच्छा,
रेख्ता कहते हैं गजल को,
गजल को। अच्छा, रेख्ता,
और रेख्ती कहते हैं ऐसी गजल जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की जुबान में किया गया।
क्या बात है,
वो रेख्ती कहलाता है,
औरतें औरतें ही लिखती है।
हाँ, अच्छा। सिर्फ औरतों की बात है। जैसे एक मिसाल उसकी मेरे जहन में आ रही है कि निसाई अदब जिसे कहेंगे के दश्त में, शहर में, गुलजार में कब जाती है, दश्त में, शहर में, गुलजार में कब जाती है, मेरी आवाज मेरे घर ही में दब जाती है।
क्या बात है, ओहो क्या बात है,
ये एक औरत की आवाज है,
औरत का दर्द,
औरत का दर्द है।
दर्द उसमें आ गया है इससे।
तो गजल में जब औरत अपनी बात कह रही है कि मैं तुम्हारे याद में इतनी बेकरार हुई, हुआ नहीं हुई, वो रेखती है, तो रेखता गजल को कहते हैं। रेखता गोया यानी गजल कहने वाले, गोया यानी कहने वाले। तो एक सैयद फतेह अली गुरवेजी का तस्करा है, ये रेखता गोया यानी गजल कहने वालों का तस्करा, ये फारसी में था। उसके बाद हमीद औरंगाबादी का गुलशने गुफ्तार,
गुलशने गुप्ता,
गुफ्तार मतलब बातचीत,
बातचीत,
गुफ्तगु उसी से बना है।
गुफ्तगु, सही बात है, सही बात है।
तो गुलशने गुफ्तार यानी बातचीत का बाग,
बातचीत, क्या बात है।
ये हमीद औरंगाबादी का ये तस्करा फारसी में लिखा हुआ था। उसके बाद मखजने नुकात, मखजन कहते हैं, लफ्ज मखजन जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है।
अच्छा,
और आपको हैरत होगी ये जानकर, और स्टूडेंट्स को भी हमारे ये जानकर हैरत होगी कि ये अंग्रेजी जुबान में हमारे स्टूडेंट्स इस वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं।
अच्छा,
अंग्रेजी जुबान में एक वर्ड है जो सबकी जुबान पर है, आपकी भी मेरी भी, उसको कहा मैगजीन।
अच्छा,
और अगर आप लुगत देखें तो लुगत में आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज मैगजीन जो है ये आया कहां से है।
डिक्शनरी,
इसकी असल जो है वो अरबी है,
अरबी है,
और वो उसका असल लफ्ज जो है वो मखजन, मैगजीन,
मैगजीन,
मखजन, मैगजीन।
हाँ, सही बात।
तो सौती एतबार से यानी आवाज के लिहाज से आप फौरन जान जाएंगे।
सही बात है, सही बात।
तो मखजने नुकात यानी नुकात यानी पॉइंट्स, तो नए पॉइंट्स उठाए हैं उसका कलेक्शन। ये फारसी का था। कायम चांदपुरी का, ये भी बड़े मशहूर नक्काद गुजरे हैं पुराने। फिर आयतुल्ला फुतूत का रियाज हसनी, ये भी फारसी का था। फिर उर्दू में तस्करे लिखे गए हैं, उर्दू में जो तस्करे लिखे गए हैं उसमें मिर्जा अली लुत्फ का गुलशन हिंद,
गुलशन हिंद,
मिर्जा अली लुत्फ इनका गुलशन हिंद, ये उर्दू का तस्करा था। उसके बाद आपके मौलवी करीमुद्दीन का तबकाते शोराए हिंद, ये भी एक उर्दू में लिखा हुआ तस्करा था, जिसमें उस वक्त के हम असर, उनके हम असर जो शोरा थे उनका तस्करा था कि फला फला ये शायर है, फला वो शायर है, फला वो शायर है, उनकी शायरी ऐसी है, उसका नमूना, फिर उनके नजर में वो शायर कैसा है, उनकी उसकी शायरी कैसी है, ये नमूने आते थे। फिर मीर कुतुबुद्दीन बातिन, ये तो वली भी थे, इनका एक तस्करा है, गुलिस्तान बेखिजां, खिजां बाहर आती है, खिजां आती है, पतझड़,
पतझड़ से
उसको खिजां कहते हैं। तो बेखिजां जिसको पतझड़ी ना आए, बाहर ही बाहर रहे फॉर एवर, तो ये चीज है। मिर्जा कादिर बख्श साबिर का गुलिस्तान सुखन, अब्दुल गफ्फार नसाख का सुखन शोरा, ये अहम तस्करे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तस्करे पुराने भी और आज की भी अगर हम देखें तो लिखे जा रहे हैं। जैसे अभी सुखनवाराने हैदराबाद, ये तस्करा उर्दू का अभी का है, कुछ मतलब 20-25 साल पहले का।
अच्छा,
सुखनवाराने, तो ये इलाकाई तस्करे कहलाते हैं, जिसमें एक मखसूस इलाके के शोरा का हाल लिखा हुआ होता है और उनकी शायरी, और उनकी शायरी या उनके कलाम के बारे में, उनके अदबी तख्लीकात के बारे में तस्करा लिखने वाले के यानी तस्करा नवेस के, तस्करा निगार के अपने ख्यालात क्या थे, ये होता है।
सर, ये हुआ शोरात के बारे में
जी।
अभी ऐसा होता है क्या कि समाज में एक एक कॉमन मैन है
जी,
सामान्य आदमी, जिसका यानी एक वजूद जो है समाज में वो सामान्य है, ये कॉमन मैन
जी,
आपके जैसे मेरे जैसा, तो क्या वो तस्करा लिख सकता है? और अगर उसने लिखा तो क्या वो प्रभावशाली हो सकता है?
कॉमन मैन तस्करा अगर लिखता है तो दो सवालात आपके इसमें दो सवालात बन जाते हैं। एक तो ये कि क्या वो तस्करा लिख सकता है, दूसरे ये कि क्या वो इतना प्रभावशाली, इतना वो मौसर असरअंदाज होगा। तो देखिए सर, ऐसा है कि एक कॉमन मैन भी तस्करा लिख सकता है,
लिख सकते हैं,
क्योंकि इसमें जितनों का हमने जिक्र किया है तो इसमें से कुछ शोरा ऐसे, कुछ लोग ऐसे थे तस्करा निगार, क्योंकि कि जिन लोगों जो लोग आम लोग थे, जो शायर नहीं थे,
नहीं थे हाँ,
लेकिन उन्होंने अपने वक्त की शोरा अपने आसपास जो देखा। देखिए शायर आपको अगर एक शेर बोलना है या कोट करना है कहीं, या आपको शायरी पसंद है, तो शायरी पसंद करने के लिए आपको शायर होना जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं, सही बात।
लेकिन जैसे मैं एक फिल्म देखने जाता हूं तो मुझे बहुत पसंद है फिल्म, मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है, तो क्या मुझे अमिताभ बच्चन होना, एक्टर होना जरूरी है उसके लिए? नहीं, मुझे उसमें दिलचस्पी होना जरूरी है,
खाली सराहना है,
है ना। तो ऐसे ही मुझे कम से कम शायर ना हूं, मैं शायरी ना करूं, लेकिन मुझे उसका जौक होना चाहिए, उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए,
दिलचस्पी होनी चाहिए।
तो ऐसे ही एक आम आदमी जिसको शायरों से, शायरी से जौक हो, दिलचस्पी हो, वो लिख सकता है तस्करा कि अब मेरे आसपास, मिसाल के तौर पे अगर मैं अहमद महल जिला कहिए या हम नासिक में बैठे हैं, तो नासिक में आज उर्दू में कितने लोग शायरी कर रहे हैं, मेरी नज़र में 8 लोग हैं, तो मैं 8 लोगों को लेकर एक तस्करा लिखूंगा कि फला साहब थे, फला साहब हैं, फला साहब हैं, इनकी ये गजल है, ये ऐसा है, इसमें ये बुरा है, ये अच्छा है, तस्करा
बन गया। सही बात, सही बात। सर अभी तस्करे के जो मशहूर लेखक है उसके बारे में आपने बताया, निगार जो है, वैसे ही तनकीद के कौन कौन से मशहूर निगार है, हाँ, उसके बारे में
जी 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 तनकीद में, उर्दू तनकीद में जब से उर्दू तनकीद का बाकायदा आगाज हुआ उसमें सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो है सर सैयद अहमद खान। उनके बाद जो नाम आता है जो बाकायदा तनकीद के साथ साथ तहरीरी शक्ल में भी जिन्होंने तनकीद को एक चीज़ दी जिसका नाम है मुकदमा शेर व शायरी, ये किताब भी पढ़ने जैसी है। ये किताब आप कौमी उर्दू कौंसिल नई दिल्ली से भी ख़रीद सकते हैं, उन्होंने भी शाये किए और इसके कई एडिशन शाये हुए हैं, दिल्ली उर्दू अकेडमी भी इसको कई मरतबा शाये कर चुकी है। तो ये मुकदमा शेर व शायरी हाल ही का एक ऐसा काम था जिसने उर्दू तनकीद को एक नया रुख दे दिया। उससे पहले बाकायदा तौर पर उर्दू में तनकीद निगारी का कोई ऐसा चलन नहीं था। सर सैयद की अगर हम बात करें तो सर सैयद ने जो तनकीद की, सर सैयद की तनकीद कैसी थी कि सर सैयद की, देखिए उसी वक्त 1857 का इनकलाब आया था, सियासी हालात बहुत ख़तरनाक हो गए थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का, इनकलाब का आगाज़ हो चुका था, और फिर उसके बाद 1857 की नाकामी के बाद हिंदुस्तान में जो कोहराम मचा तो उसमें सब लपेटे में आ गए, बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े हुफ्फाज़े कराम, इनको दिल्ली की कोई किसी बताते हैं कि दिल्ली की दरख्त, जितने दरख्त थे दिल्ली में तो हक की कोई मोटी और मजबूत शाख ऐसी नहीं बची थी जिसके ऊपर उलमाए कराम को फांसी पे ना लटकाया गया। इसकी वजह से कि इन्होंने, इसकी ये अपराइजिंग जो थी, ये इनकलाब, इसमें अहम रोल अदा किया था ये मामला। लेकिन उसके साथ ही साथ उस वक्त सर सैयद ने ये देखा कि उस वक्त ना उर्दू शायरी बहुत अच्छा काम कर रही थी और ना उर्दू नसर अच्छा काम कर रही थी। उसमें वही आशिकाना जज्बात, इश्क और आशिकी, प्यार मोहब्बत, ज़रूरत इस बात की नहीं थी। तो सर सैयद ने फिर तनकीद की कि यह वक्त नहीं है, अब हालात ऐसे हैं कि अब इसे छोड़ दो, ये गुलो बुलबुल वाले मामला खड़ा दो, अभी तो नई बेदारी लाओ, मैं जो तकाजे हैं ज़माने के, नई नस्लों को उनसे मुतारफ करवाओ, उनको बताओ कि उन्होंने क्या करना चाहिए, रहनुमाई करो उनकी, गुलो बुलबुल के परमत बांधो। ये सर सैयद ने बताया, ये उनकी तनकीद का तरीक़ाकार था। उसके बाद फिर हाल ही आए, तो हाल ही तो खुद सर सैयद के शागिर्द थे, हाल ही को शायरी से इसलिए शगफ था कि गालिब ने खुद कहा कि अगर तुम शायरी नहीं करोगे तो अपने आप पर जुल्म करोगे,
क्या बस।
तो इसलिए हाल ही ने फिर कहा कि नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं तो करता हूँ। तो उन्होंने फिर मुकदमा शेर व शायरी लिखा और मद्दो जज़र इस्लाम जैसी नज़्म लिखी उन्होंने, जो आज भी एक बहुत ही आला दर्जे की नज़्म मानी जाती है, जिसने एक बेदारी पैदा की। दो नज़में ऐसी हैं چلتے چلتے میں یہ بتاتا چلوں کہ دو نظمیں ایسی ہیں کہ جو نئے اسٹوڈنٹس نے پڑھنا چاہیے. ایک ہے شکوہ جواب شکوہ علامہ اقبال کی، اور دوسری ہے حالی کی مسدس، یعنی مد و جزر اسلام یا مسدس، اس کو اسی کو کہتے ہیں، ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں، مسدس مسدس حالی یا مد و جزر اسلام. مد کہتے ہیں اوپر جانے کو، اوپر چڑھنا، جزر مطلب نیچے گھٹنا. تو اسلام اسلام کا اوپر چڑھنا عروج، اور اسلام کا اس کا زوال، اس کا یہ پوری نظم یہ بتاتی ہے. اور اس کو مسدس اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسدس کہتے ہیں چھ کو.
اچھا،
مسدس کہتے ہیں چھ کو.
چھے
تو اس میں ایک نظم کا ایک اسٹینزا یعنی بند ہوتا ہے.
ہاں ہاں،
ایک ایک بند چھ چھ مصروں کا ہے، اس لیے اس کو مسدس کہا جاتا ہے.
مسدس کیسے، کیا بات.
تو یہ دو نظمیں جو ہیں جنہوں نے بہت گہرا اثر ڈالا، آج سوا سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ نظمیں اپنی تازگی کے ساتھ اور اپنے پیغام کے لیے اتنی ہی تازہ سمجھی جاتی ہیں جتنی اس وقت تھی جب وہ لکھی گئی. تو نئی نسل نے اس کو پڑھنا چاہیے کسی بھی حال میں.
سر، تذکرے اور تنقید کے بارے میں آپ نے بہت اچھی جانکاری دی، اور میں تو یہی چاہوں گا جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کتنی بھی پرانی ہو وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہ کچھ نہ کچھ ہم کو دیتی ہے، کچھ نہ کچھ ہم کو سکھاتی ہے. تو آج آپ تذکرے اور
کچھ نام اور ذہن میں آ رہے ہیں،
ضرور ضرور،
کہ جو اہم تنقید نگار تھے حال ہی تک کی ہم بات چونکہ وہیں تک چل رہی تھی، وہیں ختم ہو گئی تھی. تو حال ہی کے بعد شبلی بڑا نام تنقید کا، شیر العجم اس نام کی کتاب لکھی شبلی نے، الفاروق ان کی کتاب ہے، لیکن شیر العجم کے جو جتنے بھی جلدیں ہیں اس میں شاعری کے بارے میں شبلی کی رائے ہے، اور وہی رائے ان کی تنقیدانہ بصیرت ہے، مطلب ان کی تنقید ہے کہ وہ کیسے تنقیدی سوچ کیسی رکھتے تھے، یہ شبلی کا. اس کے بعد مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق جن کو بابا اردو کہا جاتا ہے،
بابا اردو
فادر آف اردو، اتنا بڑا کام ہے ان کا، وہ بھی تنقیدی بصیرت رکھتے تھے. اس کے بعد نیاز فتح پوری جن کا ایک میگزین نگار نکلتا تھا، نگار میگزین کا نام ہے، جو 44 سال تک چلتا رہا، جب تک نگار زندہ رہے، وہ نیاز فتح پوری زندہ رہے تب تک نگار نکلتا رہا. اور نگار کا ایک ایسا ایک غلبہ تھا اس وقت کہ لوگ جو شاعر نہ ہو تو بھی وہ نگار پڑھتا تھا، اتنا وہ ہوتا، ایک کریز تھا نگار کا. بعد میں جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو وہ پاکستان سے نکلتا رہا، اب نکلتا ہے یا نہیں پتہ نہیں وہ نگار کا. اس کے بعد مجنو گورکھ پوری بڑے نقاد رہے، سید احتشام حسین یہ بھی بڑے نقاد ہیں، آل احمد سرور یہ بڑے نقاد ہیں. اس کے بعد کلیم الدین احمد کے بارے میں آپ اردو غزل کو، وہ اردو غزل کی ہے، اردو جو ہے غزل اردو کی آبرو ہے، یہ کہا گیا. تو یہ ایسے نقاد رہے کہ جن کے جملے مشہور ہو گئے. اس کے بعد کلیم الدین احمد کے بعد محمد حسین عسکری ہیں، ان ناموں میں نقادوں کے نام میں پروفیسر خورشید الاسلام ہیں، پروفیسر محمد حسن ہیں، اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ہیں. اس کے بعد آپ کے
قمر رئیس
صاحب ہیں، اور جین صاحب ہیں، اور آپ کے وزیر آغا ہیں. تو یہ سارے نام ایسے ہیں اردو تنقید کے اہم نام ہیں کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہی چاہیے. جیسے میں ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا، اگر تھرڈ ایئر کے طلبہ، اگر انتقادیات ایک کتاب ہے نیاز فتح پوری،
اچھا
اگر وہ یہ پڑھیں تو بہت اچھا ان کے لیے، اسٹڈیز کے لیے بہت اچھا رہے گا، ایکسٹینسو اسٹڈیز کے لیے، کہ وہ اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھی تنقید کیا چیز ہے. اور چونکہ نیاز فتح پوری تاثراتی تنقید کے لیے، ان کا دبستان جو تھا وہ تاثراتی تنقید تھا، تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ تاثراتی تنقید کیسے لکھی نیاز فتح پوری.
صحیح بات،
وہ ایک چیز اس میں اہم ہے.
تو دھنیواد سر، آپ کا ایک بار پھر تذکرے اور تنقید کے بارے میں آپ نے ہم کو اتنی جانکاری دی، اور میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس سے कि ये दोनों जो प्रकार है उससे हम जरूर पढ़े। जब भी ऐसा नहीं कि अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और बाद में उसे भूल जाना, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद आप इसको पढ़े और उसका जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण कहते हैं, वो आप ज़रूर करें। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे स्टूडेंट्स को इतनी जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।